नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलतं फलं सुखमुकदं ऋतदिवसंमृतं विविधभक्तं रासमारयं मुहुरोरासिकभुवि भावुकहं नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टपयेष्वदेशो नित्यं भगवत्सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। एते चमसा कलापुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परं। तमसा भगवतं से पर रहा है पंचम स्कंद 20वीं अध्याय श्लोक संख्या 44। मृते मृत अंडे गोलक में ऐसा या इतस्मिन इसमें यत जो अभूत सृष्टि के समय स्वयं प्रविष्ट हुआ तथा उससे मर्तंड इति इस प्रकार व्यापदेश नाम हिरण्यगर्भ नाम से विख्यात इति इस प्रकार यत क्योंकि हिरण्यअंड समुद्भव उनकी देह हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई। अनुवाद उत्तर पालिया शिल ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद। सूर्यदेव वैराज अर्थत समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाता है। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंध के भीतर प्रवेश करने के कारण वे मर्तंड भी कहलाता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्म से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाता है। तत्पर्य ब्रह्म का पाद परम पूर्णता प्राप्त तथा आध्यात्मिकता में उन्नत जीवों के लिए है। ऐसे जीवों के अभाव में विष्णु भगवान अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं, किंतु ऐसा विराले ही होते हैं। फलतः ब्रह्मा दो प्रकार के है, कभी वे सामान्य जीवात्मा के रूप में रहते हैं तो कभी श्री भगवान के रूप में। यहाँ पर सामान्य ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म चाहे जिस रूप में हो वे वैराज ब्रह्मा तथा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। इसलिए सूर्यदेव को भी वैराज ब्रह्म के रूप में माना गया है। ओम ज्ञान तिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संयम रूपकदामायं ददाति सापदन्तिकं
Vandeyam Sri Guru Sri Yuta Padakamalan Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunatan Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savarutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvidamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रिशमानो सुदे देवी प्राणामि हरि प्रिय मंचकल्पतरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्यैव च Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhara Shiva Jadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
तो इस अध्याय ये ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण उल्लेख किया है सुग्रीव गोस्वामी ने परीक्षित को बताते थे और यहाँ पर इस अध्याय के अंत में सूर्यदेव के बारे में बताता है कि वास्तव में सूर्यदेव की प्रभाव से इस भौतिक जगत में हम देख सकता है और जैसे दूसरे भी चंद्रमा और नक्षत्र तारे जो होता है उनके भी सूर्यदेव के प्रकाश से मिलता है लेकिन जैसे यहाँ पर भी उल्लेख किया है श्री प्रभुपाद तात्पर्य में और अगले श्लोकों में और तात्पर्य में भी इसमें उल्लेख किया है कि सूर्यदेव और जैसे ब्रह्मा जी यहां पर भी प्रभुपाद उल्लेख किया है तात्पर्य में कि जड़ समय ये ब्रह्मा के पार में जीवात्मा जो योग्य है सबसे योग्य है इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड में जो योग्य जीवात्मा है इस पार में पहुंचता है लेकिन कभी कभी कोई योग्य जीवात्मा नहीं है तो भगवान के विस्तार रूप विष्णु मूर्ति ब्रह्म जी के पार में आ जाता है। वैसे ही इससे हम समझ सकते हैं और अलग अलग जगह पे भी वैदिक साहित्य में उल्लेख किया है कि जब कोई योग्य जीवात्मा सूर्य देव के पाद में नाए तो सूर्य देव के पाद आने के लिए कोई नाए है तो भगवान के विस्तार रूप एक विष्णु मूर्ति सूर्य देव का पाद में आ जाता है तो उसी समय उसका नाम है सूर्य नारायण। और कभी कभी इंद्रदेव भी के पार में भगवान की विस्तार रूप में वास्तव भगवान की विस्तार इसमें आ जाता है अगर कोई योग्य पुरुष नाय है कोई योग्य जीवात्मा नाय है तो ये इसमें उल्लेख किया है कि सूर्यदेव शक्तिशाली है और हम भी समझ सकता है और देख सकता है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए इस पृथ्वी पर रहते हुए जो जैसे यहाँ पर उल्लेख किया है बूंद मंडल में हम अभी स्थित है इसके केंद्र है जम्बुद्वीप ये नौ भाग में विभाजित है और दक्षिण की ओर तो भरद्वाज है इसके बाद अलग अलग द्वीप है अलग अलग सागर है जैसे हमारे जम्बूद्वीप के बाद ये सागर जो है नमकीन पानी के सागर है और दूसरे द्वीप के लक्षद्वीप के इसके बाद उसके एक सागर है ये गणकरस की सागर है इत्यादि घी के अगले द्वीप में घी का सागर है इसके बाद दूध या दही के है उसके बाद मीठा पानी का भी सागर है अंत में तो ये ब्राह्मण जी सूर्यदेव इंद्रदेव भगवान के प्रतिनिधि है और ये भौतिक जगत में उनकी सेवा है जिससे सब कुछ अच्छा तरह से चलता है इस भौतिक जगत में जिससे मान लीजिए एक देश में तो सरकार है लेकिन सबसे ऊपर है तो प्रेसिडेंट है लेकिन काम करने वाले बहुत हैं उनके उनके साथ जैसे प्रधानमंत्री हर देश प्रदेश में ये अलग अलग मंत्रीगण है तो पूरा देखभाल करता है राज्य के जैसे ही भगवान की सरकार में इस भौतिक जगत में भगवान की इच्छा से प्रकट हो गया है ये भौतिक जगत लेकिन कृष्णा जो मूल रूप है आदि पुरुष है ये लीला में लीन है और इस कार्य भौतिक जगत कार्य के लिए उनके अलग अलग प्रतिनिधि हैं तो नियुक्त किया है जैसे सबसे पहले शिव जी जो भगवान के अभिनय अभिनय भी है लेकिन विष्णु मूर्ति नहीं है जैसे अलग अलग भगवान के विस्तार रूप है ये विष्णु मूर्ति कहलाता है हरिपुरुष कृष्ण है इसके बाद ये शिव तत्व है विष्णु तत्व नहीं है और जीव तत्व भी नहीं है इसके बीच में है और इसके बाद जीव तत्व है और दो प्रकार क्या है नित्य सीधा जीव तत्व जो हमेशा निरंतर भगवान की सेवा में लीन है और दूसरे है नित्य बाधा जो दुर्भाग्यवश अनादि काल से बद्धावस्था में है और जब ये भौतिक जगह प्रकट हो जाता है ये इसमें आ जाता है लेकिन भगवान तो परम दयालु है और स्वयं यहाँ पर आ जाता है जैसे कृष्ण चंद्र भगवान उनके आविर्भाव हुआ 5000 वर्ष से पहले इसके बाद महाप्रभु आई है ये भी स्वयं भगवान है और दूसरे समय उनके विस्तार रूप आ रहा है अवतरित होता है विष्णु मूर्ति ये धर्म स्थापित करने के लिए ये भक्त लोग की रक्षा करने के लिए और असुर लोग विनाश करने के लिए आता है भगवान स्वयं भगवान और उनके विस्तार रूप सब और इसके बाद भी उनके प्रतिनिधि आ जा रहे हैं आ रहा है उनके शुद्ध वैष्णव जो गुरु जान के रूप में आ जाता है और वास्तव में सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा गुरु के पास जाना है जो भगवान के प्रतिनिधि है जब उनकी आश्रय में है और उनकी सेवा करता है उनके आदेश अनुसार भजन करता है तो आगे जा सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है उनकी कृपा से तो ब्राह्मण जी और सूर्यदेव ये शक्तिशाली भगवान के प्रतिनिधि है देवता है जिसे ब्राह्मण जी ये इस कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय है हरिगुरु कृष्ण ही है इसके बाद दिव्य ज्ञान प्रदान किया ब्राह्मण जी को जैसे इंगित किया है पहले श्लोक श्रीमद् भागवतम के तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवि ये आदि कवि को ब्राह्मण जी को ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया इसके बाद चतुश्लोक में भगवतम के द्वितीय स्कंद नवम अध्याय इसमें भी उल्लेख किया है कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण जी को श्री भगवान वाचा ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञानम समन्वितम सा रहस्यम तदंगश्चा ग्रहण गतितम मया हे ब्राह्मण जी अब ये दिव्य ज्ञान ग्रहण कीजिए. और कहता है जी जे गोपनीय है गुयतम परम गुयम. और इसके साथ भी कहता है कि सामग्री भी दिया है, मतलब पद्धति दिया है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं ये ज्ञान. इसलिए ज्ञानम परम गुयाम यद विज्ञानम. पहले ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे भगवान है, हम भगवान के अंश है, शरीर ना या अपितु आत्मा है. अब ये ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन इसके बाद हमको ये इसका अनुभव भी करना है. और ये आसन नहीं है, भरद्वाज में लगभग सबको मालूम है कि हम शरीर ना या अपितु आत्मा है. और पश्चिम देश में भी जो भगवान को मानता है, जैसे बाइबल जीसस क्राइस्ट, इसमें भी उल्लेख किया है कि हम शरीर ना या अपितु आत्मा है. लेकिन इसका अनुभव करना सरल नहीं है, भजन करते करते. इसलिए सार रहस्यम तद अंगच्छा. तो पद्धति भी दिया है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं ये परम ज्ञान दिव्य ज्ञान. तब भी ज्ञान हो जाता है जब अनुभव करता है भगवान का सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप और आत्मा स्वरूप. तो ब्रह्म जी भी तो गुरुजान है हमारे संप्रदाय में. कृष्ण के बाद तो ब्रह्म जी आदि गुरु है. दूसरे संप्रदाय है तो नारायण से ज्ञान प्राप्त किया लक्ष्मी देवी, उन्होंने भी तो दिव्य ज्ञान कोई महापुरुष को दिया है. और इसके बाद चार कुमार और रुद्र संप्रदाय, शिव जी ये भी देवता है, शक्तिशाली है और ये भी एक संप्रदाय के गुरु है. और इसके बाद सूर्य देव भी, उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है जैसे कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता. एवं परम प्राप्तम इमाम राजा सविदु साकले महाता योग नष्ट परम तपहा. कि मैंने ये दिव्य ज्ञान तो सूर्यदेव को भी दिया है. तो भगवान श्री कृष्ण दयालु है, आ जाता है और दिव्य ज्ञान देता है. और इसके बाद सबसे तो ये दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु है जो राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है. और उन्होंने भी दिव्य ज्ञान दिया अपने भक्त को, जो वास्तव में उनके नित्य सिद्ध परिकार है. लेकिन तो लीला में उनके माध्यम से ये दिव्य ज्ञान तो हमारे पास आ गया है गुरु परंपरा के माध्यम से, जिससे उनके मतलब यहाँ पर ये सब दीक्षित है लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो शिक्षा देते थे, दीक्षा नहीं देते थे. लेकिन दूसरे दिन से दीक्षा लिए थे ये जैसे हमारे चय गोस्वामियाँ. और लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उनको दिया है. इसलिए इस पहले श्लोक के व्याख्या में जो वास्तव में श्रीमद् भागवतम के ये हमारे पूर्वाचार्यों ने जैसे जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद उल्लेख किया है, इसमें तो इंगित किया है सत्यम परम धीमे ही परम सत्य. परम सत्य कृष्ण ही है लेकिन महाप्रभु भी है. तो तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवये. तो कृष्णा ब्रह्म जी को दिया ये आध्यात्मिक ज्ञान. और इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ये आध्यात्मिक ज्ञान आदि कवैया रूप गोस्वामी को दिया है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ भक्त है. और राधा कृष्ण जुगल के इस लीला में, कृष्ण लीला में तो रानी के दासी है, सहेली है, सखी है, रूप मंजारी. तो हम अपने आप को रूपा नुग वैष्णव कहलाता है. हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलता है. सदा के शरीर में रूप गोस्वामी के अनुसार जब आज्ञा है आध्यात्मिक वस्त्र पर पहुंचता है सिद्ध शरीर पे, तो रूप मंजारी के अनुगत्य में हम सेवा कर रहा है, शरण भजन कर रहा है. तो सूर्यदेव भी आध्यात्मिक ज्ञान देता है किसी कोई दूसरे को देता है. ऐसे करते हुए तो अलग अलग संप्रदाय है भगवान की कृपा से. कलयुग में चार है और इसके बाद अलग अलग शाखाएं है हर संप्रदाय में, जैसे हमारे संप्रदाय में भी अलग अलग जैसे तत्ववादी है मध्वाचार्य के, इसके बाद महाप्रभु के बाद अद्वैत वंश के हैं, नित्यानंद वंश के। और सौभाग्य की बात है कि हम इस गौरीय ब्रह्म माधव गौरीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और ब्रज के भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और उनके चे उनके घनिष्ठ नित्य सिद्ध परिकर के माध्यम से उनके किताबे के माध्यम से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है रूप गोस्वामी पाद के उपदेश अमृत और भक्ति रस अमृत सिंधु। इसके बाद दूसरे भी है जो जिन्होंने प्रभुपाद के सब किताबें पढ़ लिया है, दूसरे भी पढ़ सकता है जिसे और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिससे हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। तो दो तीन यहाँ पर इस अध्याय दो श्लोक और है और ये भी अभी पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इस तत्पर्य कुछ उल्लेख किया है श्लोक प्रभुपाद की, अगर मतलब ये ब्राह्मण जी अगर कोई योग्य जीवात्मा आए है ब्राह्मण जी के पार में पहुंचने के लिए तो श्री कृष्ण के विस्तार रूप विष्णु एक विष्णु मूर्ति इस पार में आ जाता है। लेकिन इस अध्याय में तो ज्यादा से ज्यादा अभी इस प्रसंग में सूर्यदेव के बारे में बताता है, इसलिए दो दो श्लोक अभी इस अध्याय के अंत जो इसमें सूर्यदेव के बारे में कुछ बताता है मैं अभी पढ़ रहा हूं। सूर्य न ही विमान जानते दिशा स्थान जो जोर माही विधा स्वर्ग पवार्ग नरका रसो कंसी च सर्वशः। अनुवाद शिल प्रॉपर के माध्यम से, हे राजन सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करता है, सूर्य की उपस्थिति के ही कारण हम समझ पाता है कि आकाश स्वर्गलोक या संसार तथा पतलोक क्या है। सूर्य के कारण हम जान पाता है कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से है और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक है। तो सूर्यदेव दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद जो आचार्य जैसे सुग्रीव गोस्वामी श्रीमद् भगवतम में इस भौतिक जगत के बारे में जैसे इस अध्याय में उन्होंने ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण किया है, जो वास्तव में भगवान तो अद्भुत है, अद्भुत कृष्णा, आध्यात्मिक जगत अद्भुत है, विशेष करके गोलोक वृंदावन सर्वोत्तम जगह आध्यात्मिक जगत में, लेकिन इसके बाद भी भौतिक जगत ये अद्भुत है, भगवान की अद्भुत सृष्टि है और ब्रह्म जी के माध्यम से प्रकट हो गया है, लेकिन आदि कारण तो कृष्ण है, मूल कारण कृष्ण ही है, उनकी इच्छा से ये प्रकट हो जाता है ये भौतिक जगत। और इसके बाद अंतिम श्लोक इस अध्याय के, देवातीर्यम मनुष्यानम सारी श्री प्रसवीरुधम सर्वजीवानिकायानम सूर्य आत्मा दृगीश्वरः। अनुवाद, सूर्य लोग से सूर्यदेव द्वारा प्रदान की जा रही है उष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्मा है, जिसमें देवता मनुष्य पशु पक्षी कीट रेंगने वाले जीव लता तथा वृक्ष सम्मिलित है, निर्भर है। सूर्य की ही उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकता है, इसलिए वो दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाता है। तत्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल्प के द्वारा इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, सूर्य आत्मा आत्मत्वे नुपास्या। इस ब्रह्मांड में सूर्य ही समस्त प्राणियों का जीवा और आत्मा है, इसलिए वो उपास्या है। हम सूर्य देव की उपासना गायत्री मंत्र के जप ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुः वरेण्यं भार्गव देवस्य धीमहि इत्यादि द्वारा करता है। सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है जिस प्रकार श्री भगवान इस समस्त सृष्टि के ही है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिन के लिए सूर्य देव जीवन और आत्मा है। हमें ज्ञात है कि वैराज हिरण्यगर्भ ने सूर्य नामक विशाल भौतिक गोलाक में प्रवेश किया है। अतः तथाकथित वैज्ञानिकों का यह कथन है कि वहां कोई नहीं वास करता है असत्य है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव को गीता का उपदेश दिया, इमं वस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अतः सूर्य रिक्त नाय है, इसमें जीवात्माएं निवास करते हैं और इसका प्रधान शिवग्रह वैराज अथवा विवस्वान है। पृथ्वी तथा सूर्य में यही अंतर है कि सूर्य अग्निमय लोक है किंतु वहां के प्राणी अनुकूल शरीर धारण करके बिना कठिनाई के वहां निवास कर सकता है। तो सूर्यदेव के बिना हम वास्तव में इस भौतिक जगत में तो नहीं जी सकता है, यह हम इससे स्पष्ट समझ सकते हैं। और वास्तव में तो अलग अलग देवता है और उनकी कृपा से हम रह सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर इंद्रदेव नहीं है तो हम भी नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जल तो की जरूरत है। और चंद्रमा भी, चंद्रमा की कृपा से जो औषधियाँ और सब्जियाँ घास उगता है, तो वैसे ही तो सब देवतलों देवता गण भगवान के प्रतिनिधि है। और हमको समझना चाहिए कि हम तुच्छ जीवा है, जीवात्मा है, और सबसे पहले तो गुरु की कृपा चाहिए और इसके बाद तो वैष्णव की कृपा चाहिए जिससे हम भजन कर सकते हैं, जिससे ऐसा उनकी कृपा प्राप्त होते हुए हम ठाकुर जी की सेवा कर सकता है और आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। लेकिन वैष्णव शुद्ध वैष्णव विशेष करके उनको मालूम है कि सब जीवात्मा भगवान के दास है, भगवान के अंश है, और इसलिए सबको यथासंभव यथाशक्ति और यथा योग्य कभी सम्मान देता है। और जैसे जीव गोस्वामी पाद या रूप गोस्वामी पाद गोपाबाद गोस्वामी कहता है कि आराध्य देव तो कृष्ण ही है और महाप्रभु की भक्ति भी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख किया है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम, आराध्य भगवान कृष्ण ही है, यशोदा नंदन नंद नंदन, और वैसे पूजनीय उनके धाम है। सो तदिया जो भगवान के संबंध में है ये भी पूजनीय है। और इसके बाद ये हमारे गुरुजन कहता है कि जो देवता लोग जो है ये भगवान के एक प्रकार के प्रतिनिधि है और उनको भी सम्मान देना है, लेकिन पूजा कृष्ण की, कृष्ण सिर्फ कृष्ण की करते हैं। इसमें यहाँ पर उल्लेख किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कि सूर्यदेव इस ब्रह्मांड के आत्मा है, जैसे भगवान ही सर्वव्याप्य है तो एक दृष्टि से सूर्यदेव भी इसके प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में प्रकट है और इसलिए गायत्री मंत्र में गायत्री जप भी करते हैं भक्त लोग और भरतवास में सबको मालूम है ये ब्रह्म गायत्री ओम पूर्ववासवा तत्सवितुर वरेण्यम पूजनीय है सवितुर सूर्यदेव उपास्या है तो इसलिए बहुत सारे लोग इस भौतिक जगत जो वैदिक साहित्य को मानता है तो सूर्यदेव की उपासना कर रहा है रोज रोज सूर्योदय के बाद तो और वैष्णव और जो शास्त्र मानता है ये सूर्योदय से पहले उठ जाता है स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हुए इसके बाद जप करता है पूजा कर रहा है और सूर्योदय के बाद तो सूर्यदेव की उपासना भी कर रहा है और आजकल भी देख सकता है विशेष करके धाम में या तीर्थ में कि लोग लोटा लेकर जल अर्पण कर रहे हैं सूर्यदेव को उनको प्रणाम करता है और जैसे यहाँ पर भी इंगित है अलग अलग नाम है सूर्यदेव के जैसे मार्तंडा क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रवेश किया है केंद्र में है अंडा गोलाक में मार्तंडा इसमें प्रवेश किया इसको इसलिए उनका नाम है मार्तंडा दूसरा नाम भी है रवि भास्कर इत्यादि सवितुर तो हम रोज रोज गायत्री जो दीक्षित है ब्रह्म दीक्षित है ब्रह्म दीक्षा मिला है गायत्री मंत्र मिला है ये गायत्री ये पहले गायत्री है ब्रह्म गायत्री परम सत्य इसमें इंगित है और जो वैदिक शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहा है विशेष करके ब्राह्मण और ये भी रोज रोज ब्रह्म गायत्री को चरण करता है और दूसरे भी क्षत्रिय वैश्य हो जिन्होंने गायत्री मिला है ये प्रतिदिन वास्तव में उनको ये गायत्री ब्रह्म गायत्री का जप करना है और आजकल भी होता है जो जब ब्राह्मण कुल के पुत्र 8 और 12 साल के बीच में 8 से 12 इस उसी समय तो उपनयन संस्कार होता है और उपनयन संस्कार तो उसी समय ये ब्रह्म गायत्री मिलता है और वैश्य क्षत्रिय जब 15 साल के हैं और वैश्य जब 20 साल के हैं या शरीक के समय तो उनको देता है लेकिन शूद्र को नहीं देता है और स्त्री को भी नहीं देता है वास्तव में ये गायत्री मंत्र ये पुरुष के लिए है वैदिक साहित्य के अनुसार लेकिन प्रभुपाद ने पश्चिम देशों में तो स्त्री को भी दिया क्योंकि ये मांगती थी तो जब प्रभुपाद दीक्षा देते थे तो अलग अलग गायत्री मंत्र दिए थे तो ब्राह्मण गायत्री भी दिए थे पुरुष को उनके शिष्य को लेकिन स्त्री को नहीं दिए थे शुरुआत में लेकिन इसके बाद उनके शिष्य स्त्री के शिष्यों के तो समझ उनको समझ लिया कि प्रभुपाद नहीं दिया एक मंत्र हमको ये क्या है तो प्रभुपाद से पूछा वो प्रभुपाद तो उन्होंने बोला है कि तो ये भरद्वाज में ये ब्रह्म गायत्री सिर्फ पुरुष को देता है तो माता जी लोग तो कहती थी लेकिन क्या बात है तो एक भेदभाव तो है ये क्या बात है तो इसलिए प्रभुपद माता जी लोग को भी दिया है और हमको भी मालूम है विशेष करके पश्चिम देश में तो ज़्यादा फर्क नहीं है पुरुष स्त्री के समान भी है और स्त्री पुरुष के समान और इसमें लेकिन तो सूर्यदेव की उपासना होता है एक दृष्टि से और जब हम सूर्यदेव को देखता है हम भी प्रणाम करता है लेकिन सब सिर्फ सूर्यदेव को प्रणाम नहीं करता है जैसे अलग अलग यहाँ पर इस भौतिक जगह में रहते हुए प्राणी है तो हम सिर्फ तो जैसे मनुष्य देखता है सबसे पहले पुरुष स्त्री हो और लेकिन सिर्फ शरीर नहीं देखता है, पुरुष नहीं देखता है, मनुष्य को नहीं देखता है, लेकिन इसके अंदर जीवात्मा है और परमात्मा है या भगवान। इसलिए हम वंशकल्प तुर्भिषा कहता है सिर्फ या सन्यासी को देखता है तो ये भगवान के प्रतिनिधि है तो सन्यासी को प्रणाम करता है, लेकिन वहाँ पर भी उनके दिल में जो स्थित है भगवान को भी अर्पण करता है प्रणाम। वैसे ही सूर्यदेव को प्रणाम करता है लेकिन सिर्फ सूर्यदेव को नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण को विशेष करके हमारे संप्रदाय में, क्योंकि सब क्योंकि कृष्ण तो सर्वव्यापी है और विशेषकर क्योंकि शुद्ध वैष्णव के दिल में स्थित है, विराजमान है, इसलिए सूर्यदेव को प्रणाम करता है ब्रह्म गायत्री चरण करते हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करता है। और वास्तव में सूर्यदेव उनके प्रतिनिधि है और प्रकाश भी, सूर्य का प्रकाश कहाँ से है? ये सूर्य प्रकाश ब्रह्म ज्योति से है, से आया है, और ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर के प्रकाश है। इसलिए जब गायत्री मंत्र जप करता है तो प्रणाम करता है सूर्यदेव को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम भी करता है और विशेष के उनको वास्तव में उनको प्रणाम करता है। और या हाँ, इसके बाद वरेण्यम भार्गो देवस्य भार्गो उष्मा, जिसमें इसमें लेख भी क्या प्रकाश और उष्मा है, तो शक्ति भगवान की शक्ति मूल शक्ति कौन है? श्रीमती राजरानी, तो राजरानी का स्मरण भी करता है जब ब्रह्म गायत्री उच्चारण करता है, क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण हमेशा उनके साथ है, गोपियां या गोप गोप स्त्री पर वेष्टित गोपाल चुरामणि ध्यायन वीरेंद्र रान्या गोप गोपी रलंकृत कादम्ब परवर्चाये जमुन जल शीतले राधा सायतम कृष्णम वंशीवर तत्परम त्रिमंगलतम देवम भक्तानुग्राह कारकम। तो हम वृंदावन में कृष्ण का स्मरण करता है, उनके साथ श्रीमती रानी है और गोप भी आसपास है और गाय और बछड़े और कृष्ण हमेशा त्रिभंग ललितों के सुंदर रूप है और वंशी बजाते हुए रहता है और भक्तानुग्रह कारकम और हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, लेकिन आशीर्वाद मिलने के लिए तो हम उनकी उपासना करना है। इसलिए जब गायत्री जप करता है तो कृष्णा का स्मरण भी करता है और साथ ही साथ क्योंकि सबसे पहले गुरु पूजा होना चाहिए, इसके बाद गौरांगा तो श्री चेतना महाप्रभु और जैसे ओम शब्द इसमें क्या है, आ उ करण चते कृष्णा उ करण चते राधा माँ का जीव वाच कहा, तो इसमें इंगित है ओम ओम का में प्रणाम में कृष्णा शिवचरा रानी और जीव। तो इसके बाद तत्सवितुर वरेण्यान, तो गुरु की कृपा से महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्णा की उपासना हम कर सकता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जब गायत्री मंत्र जप करता है तो उसी समय तो हमेशा तो गुरु का स्मरण करना है और जैसे उसके बाद महाप्रभु इसके बाद राधा कृष्ण, जैसे ठाकुर जी की सेवा भी होता है वहां पर भी सबसे पहले गुरु पूजा इसके बाद गौरांग पूजा इसके बाद कृष्ण पूजा, वैसे ही जब जप करता है महामंत्र के गुरु की कृपा के बिना तो अच्छा तरह से जप नहीं कर सकता है, इसलिए उनको स्मरण भी करना है, इसके बाद महाप्रभु का स्मरण भी करना है, इसके बाद अच्छा तरह से राधा कृष्ण की स्मरण कर सकते हैं जप के समय। तो सूर्यदेव भगवान के प्रतिनिधि है और रोज रोज हम उनको भी प्रणाम करता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि तो इष्ट देव कृष्ण ही है, लेकिन उनको भी प्रणाम करना है, सूर्यदेव को और सब वैष्णव को प्रणाम करना है और देवता को भी और विशेष करके ब्रज में रहते हुए तो शिव जी की कृपा के बिना तो यहाँ पर ना रह सकता है, उनको भी प्रणाम करना है सबको। इसलिए वैष्णव हमेशा विनम्र भाव में रहता है, सबको प्रणाम करता है। ऐसे करते हुए हम अच्छे तरह से शरण भजन कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं और आत्मा और भगवान का स्वरूप अनुभव कर सकता है। वंच कल्प त्रुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री गोनिताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, गौ प्रेमनंदे हरे हरे बोल।